جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے التجا کیا، رب مجھے دیکھنے کی وہ طاقت دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں. موسیٰ رب سے کلام کر رہے ہیں اور کہہ رہے رب میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور یہ کیا خوبصورت ایکسپیرینس ہوگا، اس کو میں اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں موسیٰ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، وَكَلَّمَهُ رَبُّ. تو میں آپ سے کہتی ہوں کہ اس وقت آپ اور میں کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، موسیٰ کی طرح آپ کہہ لیجئے کہ آڈیو فارم میں تو اللہ ہم سے اس وقت بات نہیں کر رہا، لیکن اللہ کا کلام تو موجود ہے. اس وقت جو اپنے دل کی ہم کیفیت پاتے ہیں، موسیٰ کی کیفیت کو امیجن کریں، اور یہی کیفیت جنت میں حاصل ہوگی جب اللہ سے کلام ہوگا، جب اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوں گی. اس کی تڑپ کے لیے آج اس کلام کو اٹھانا پڑے گا. آج اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کریں تو نماز شروع کر دیں، اور آپ کا دل چاہے کہ رب آپ سے باتیں کرے تو قرآن پڑھنا شروع کر دیں. نماز اور قرآن یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائلنگ دیتی ہیں، بیچ میں کسی آپریٹر کی بھی ضرورت نہیں رہتی. لیکن موسیٰ کے دل میں خواہش تو اس سے بڑھ کے تھی کہ صرف آڈیو نہیں سنیں گے، ہمیں ویڈیو بھی دکھائیے. یہی کہہ رہے ہیں اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ویڈیو دکھائیے، تو فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دے. جب یہ پہلے دن اسکرین فٹ کر رہے تھے تو میں بھی ان سے پوچھ رہی تھی اس کی ضرورت کیا، آواز جا رہی ہے کتنا کافی نہیں؟ کہتے نہیں، ویڈیو جاتی ہے تو ذرا نظر آتی ہے. تو مجھے کیا اس ویڈیو سے لگے، میں تو آپ کو نہیں دیکھ پا رہی نا، آپ سو رہے ہیں اس وقت بھی ادھر، پتہ نہیں مائیں کیا کر رہی ہیں، بیٹھی بچوں کو سو رہے ہیں، کہیں تو سوئے ہوں گے اندر. تو ون وے تو نہیں، پھر ویڈیو تو دونوں طرف کی ہو تو پھر ہی اچھی لگتی ہے نا. لیکن یہ انسان کی طبیعت ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں سامنے رکھوں، اور جب بندہ سامنے ہم نے بیٹھتا ہے تو اس سے پھر کمیونیکیشن بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا یہ تقاضا کرنا موسیٰ کا حد سے بڑا ہوا نہیں تھا. اسی پہ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا کہ صدائے لن ترانی سن کے میں چپ ہوں، یعنی کہ یہ جو لن ترانی نیور یو ول نیور سی می، یہ اللہ نے موسیٰ کو کہا تھا. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں یہ جملہ سن کے چپ ہوں، مجھے تقاضوں کی ضرورت نہیں مل رہی حالانکہ میں فرقت کا مارا ہوا ہوں، کہ اللہ میں بھی تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، پر جب تو نے موسیٰ کو کہہ دیا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا تو تو مجھے کیسے دکھا سکتا ہے، اس لیے میں تجھے دیکھنے کا تقاضا نہیں کرتا. لیکن یاد رکھیے جنت میں سب دیکھیں گے اللہ کو جب اللہ ان کے لیے چاہے گا. یہ آگے سورہ یونس میں انشاءاللہ آیتیں آئیں گی. فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا. چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے. جب ہوش آیا تو بولے پاک کے تیری ذات میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں. فرمایا موسیٰ میں نے تجھ کو لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، پس جو کچھ میں تجھے دوں اس کو لے لے اور شکر بجا لا. آج امت مسلمہ کو اللہ نے یہی آنر دی ہوئی ہے جو موسیٰ کو ادھر دی جا رہی تھی کہ تو میرے پیغام کو لے کر آگے پھیلا. اس کے بعد موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایات تختیوں پر لکھ کر دے دی، اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال لو اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں. ان قریب تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے پھرتے ہیں، وہ خواہ کوئی نشانی بھی دیکھ لیں مگر کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے. اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آ جائے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آ جائے تو اس پر چلنے لگیں گے. ان آیتوں پر ہم ایک پریزنٹیشن دکھاتے ہیں، سبیل الغی اور سبیل الرشد. کل ریڈی رکھیے گا صبح، ہم آپ کو انشاءاللہ 10:15 پہ دکھائیں گے، اس لیے جو دیکھنا چاہے موسٹ ویلکم آئیے گا. اور واقعی اس کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے خطروں میں، ہم سیدھے نہیں چل رہے بلکہ ہم کرس کراس چل رہے ہیں، کسی لمحے ہدایت کے سفر سے ہم گر کے گمراہی کے سفر پہ جا سکتے ہیں. اسی لیے دن رات دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ سیدھا چلتے چلتے ہمیں ٹیڑھا نہ کر دے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی برتتے رہے. ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، کیا لوگ اس کے سوا اور کچھ جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں. تو اعمال کی جزا انسان کے اعمال کے مطابق ہوگی. اب موسیٰ تو گئے تورات لینے، پیچھے قوم کا حال دیکھیے گا. موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑے کا پتلا بنایا جس میں سے بیل کی سی آواز آتی تھی. کیا ان کو نظر نہ آتا تھا کہ وہ ان سے نہ بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ मगर फिर भी उन्होंने इसको माबूद बना लिया और वो सख्त जालिम थे। ये बछड़ा कहाँ से आ गया? इजिल, उजलत। और उजलत कहते हैं दुनिया को, जल्दी मिलने वाली चीज को। आज ही का लफ्ज आ गया, हम पढ़ेंगे सूरह बनी इसराइल में। तो देखिए यहाँ बछड़ा जो है ना, ये दुनिया की मोहब्बत की अलामत है। उन्होंने भी जेवरात से बनाया था, आज भी सोना चांदी हमारा बछड़ा बन गया। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत पर फकर का नहीं बल्कि कसरत दौलत का खतरा है कि आपके पास इतनी दौलत हो जाएगी कि हम उसको पाकर अल्लाह के हुक्मों को नहीं माने। आज भी तो देखिए लोग माइटी डॉलर और अपने आप को पता नहीं किन किन मुश्किल में डालते हैं ताकि दौलत को पा सके। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे बछड़ों को आज ही खत्म कर दे, इससे पहले कि वो हमें खत्म कर दें। फिर इसके बाद ये देखिए कि ये बेजान चीजों की मोहब्बत है जो ना पास बैठती है ना बात करती है, लेकिन इंसान इनको कमाते कमाते अपने ही रिश्तों से इतना दूर हो जाता है कि सगे बच्चों के पास भी वक्त गुजारने का इंसान के पास वक्त नहीं होता। वलम्मासु की तफी आई दी हिम, फिर जब इनकी खुर्दगी का तिलसम टूट गया तो उन्होंने देख लिया कि दर हकीकत वो गुमराह हो गए हैं, तो कहने लगे अगर हमारे रब ने हम पर रहम न फरमाया और हमसे दरगुजर न किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वलम्मा राजा मूसा इला कौमी गदबान आसिफा, इधर से मूसा रंज और गम में भरे हुए अपनी कौम की तरफ पलटे और उन्होंने कहा बहुत बुरी जानशीनी तुमने की मेरे बाद, क्या तुमसे इतना सब्र ना हुआ कि अपने रब के हुक्म का इंतजार कर लेते? और तख्तियां फेंक दी और अपने भाई हारून के सर के बाल पकड़कर उसको खींचना शुरू किया। नेचुरल रिएक्शन था, एक मोमिन दीन के कामों में डिसऑर्गेनाइजेशन बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हदीस से पता चलता है कि अल्लाह के नबी ने कभी किसी से अपनी जात के लिए गुस्सा नहीं दिखाया, लेकिन जहां दीन की कोई बात ना मानी जाए उसको अल्लाह के नबी कभी छोड़ते नहीं थे। और अच्छे लीडर की यही पहचान है, कभी भी गलत चीज को देख के खामोश रहना, अगले को दोबारा वही काम करने का मौका देना। तो मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया कि मैं तो आपको इतने बड़े काम पे रखा था, आपने पीछे कौम को किस तरह की शिर्क में मुब्तला होता देखा और कुछ भी ना कहा। और तख्तियां फेंक दी और अपने भाई के सर के बाल पकड़कर खींचे। हारून ने कहा मेरी माँ के बेटे, नोट कीजिए अब यहाँ, हजरत हारून कैसे बुजुर्ग बनते हैं, छोटे बन जाते हैं। जब मैनेजमेंट का इशू आता है हजरत हारून हजरत मूसा से छोटे बन जाते हैं। याद रखिए कुछ लोग बड़े बन जाते हैं लेकिन बुजुर्ग नहीं बनते, उनमें बुजुर्गी नहीं होती। हालांकि जिस खानदान के बड़े बुजुर्ग भी बन जाएं वो खानदान जुड़ जाते हैं, और कई बुजुर्ग अपने घरों को तोड़ने का जरिया बनते हैं। और बड़े बनना कब आता है? जब हिकमत होती है। उनको समझ आ गई थी कि इस वक्त मूसा दुख में, इसलिए अगर मैं आगे से कुछ बोलूंगा तो मुश्किल होगी। और साथ ही उन्होंने कह दिया है मेरी माँ के बेटे, माँ को बीच में लाकर जज्बात को उभार दिया। तो क्या पता चला कि आज भी उम्मत मुस्लिमा को इसी निस्बत के साथ एक दूसरे गिरोह से मिलने की जरूरत है ताकि आपस के बुगज और कीने जो है वो खत्म हो जाए। अब अपनी सफाई पेश करते हैं, इन लोगों ने मुझे दबा लिया था और करीब था कि मार डालते, बस तो दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका ना दे। जब मुसलमान भाई मुसलमान से लड़ता है तो दुश्मन खुश होते हैं। अल्लाह के नबी ने एक दुआ सिखाई थी, आप मेरे साथ दोहरा लीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाई वदरकि शकाई वशमाततिल आदाई। इसी तरह बीच में एक और लफ्ज भी आता है वसूइल कदाई। इसके दो तीन डिफरेंट एंगल हैं जिसका मफहूम क्या है कि अल्लाह मैं तेरी पनाह में आती हूँ बलाओं के आने से, बदबख्ती के पहुंचने से, बुरे फैसलों से और दुश्मनों की हंसी से। तो हमें आज जरूरत इसको मांगने की, आप इस दुआ को याद करें इंशाल्लाह। इस पे मैंने बाहर कार्ड भी देखा है, मुझे लगता है कि है कहीं हमारे पास। तो इस दुआ को इंशाल्लाह किसी भी दर्स में हम करेंगे ताकि इसको याद करें कि अल्लाह दुश्मनों की हंसी से मुझे बचाना। आज दुश्मन हंस रहा कि नहीं हंस रहा? दो मुसलमान मुल्कों को लड़ा के भी वो हंसते हैं और दो मुसलमान गिरोहों को लड़ा के भी हंसते हैं और हम बेवकूफ बनकर उनको हंसाई जाते हैं। फिर इसके बाद आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब भाई की ये बात सुनी तो फौरन उनका गुस्सा चला गया। तब मूसा ने कहा मेरे रब मुझे और मेरे भाई को माफ कर दे। इससे पता चलता है कि मोमिन को गुस्सा आता तो है लेकिन ठहरता नहीं। अपनी गलती का भी एहसास हो गया कि मैंने भाई से ज्यादा ही सख्ती में बात पूछ ली, ना हारून ने उनके गुस्से को हवा दी ना उन्होंने उनकी बात को रखा और मौका संभाल लिया। तो फौरन दुआ की, अल्लाह मुझे माफ कर दे तो सबसे बड़ा रहीम है। जवाब में इरशाद हुआ कि जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया वो जरूर अपने रब के गजब में गिरफ्तार होकर रहेंगे और दुनिया की जिंदगी में जलील होंगे। झूठ खड़ने वालों को मैसी ही सजा देते हैं और जो लोग बुरे अमल करें फिर तौबा कर लें और ईमान ले आए तो यकीनन इस तौबा ईमान के बाद तेरा रब दरगुजर कर और रहम करने वाला है। तो ये सब बातें हमारे लिए सीखने की हैं कि किस तरह से इस तरह की बातें बंदे को अपनी गलती याद आ जाती है जब उसके पास तकवा होता है। अब क्या हुआ, फिर जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ, इसे एक बात नोट कर लें, गुस्से में किताब समझ नहीं आती, और इस्तगफार की तो गुस्सा चला गया। कभी आपको भी गुस्सा है, कई लोगों को कुरान पढ़ते गुस्सा आता है, कईयों को शायद मेरे पे भी आ रहा होगा इस वक्त कि इतनी तेज पढ़ रही है हमें, हम साथ ही नहीं चल पाते, किसी को कुछ आ रहा होगा। तो जब भी कभी ऐसा हो तो इस्तगफार पढ़े, इंशाल्लाह गुस्सा दूर हो जाएगा। फिर जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो इन्होंने वो तख्तियां उठा ली जिनकी तहरीर में हिदायत और रहमत इन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं, और उन्होंने अपनी कौम के 70 आदमियों को मुंतखब किया ताकि वो इसके साथ हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर हाजिर हों। जब इन लोगों को एक सख्त जलजले ने आ पकड़ा तो मूसा ने अर्ज किया, मेरे सरकार, आप चाहते तो पहले ही इनको और मुझको हलाक कर देते, क्या आप इस कसूर में जो हम में से चंद नादानों ने किया था हम सबको हलाक कर देंगे? ये तो आपकी डाली हुई एक आजमाइश थी जिसके जरिए से आप जिसे चाहते हैं गुमराह कर देते हैं और जिसे चाहते हैं हिदायत बख्शते हैं। हमारे सरपरस्त तो आप ही हैं, आप हमें माफ कर दीजिए और हम पर रहम फरमाइए, आप सबसे बढ़कर माफ करने वाले हैं। और इसके बाद करें क्या, यहां से नोट कीजिएगा, दुआ है ये, वक्तुब लना फी हासिहि दुनिया हसना, और हमारे लिए इस दुनिया की भलाई भी लिख दीजिए और आखरत की भी, हमने आपकी तरफ रजू किया। देखिए, इस्लाम दुनिया को कंडेम नहीं करता, इधर और नहीं है कि इधर दुनिया और दुनिया, दुनिया भी मिलती है आखरत भी मिलती है, दोनों में बस एक बैलेंस होना चाहिए। तो पीछे भी इसी तरह की दुआ थी, यहां भी आ गई कि अल्लाह इस दुनिया में भी हमारे लिए भलाई लिख दे और आखरत में भी, और हम आपकी तरफ रजू करते हैं। जवाब में इरशाद हुआ, सजा तो मैं जिसे चाहता हूँ देता हूँ, मगर मेरी रहमत हर चीज पर छाई हुई है, और इसे मैं इन लोगों के हक में लिखूंगा जो नाफरमानी से परहेज करेंगे, ज़कात देंगे और मेरी आयात पर ईमान लाएंगे। यहाँ क्या पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अच्छे तरीके से बता दिया कि अब इसके बाद तुम्हारी मदद कब की जाएगी, जब तुम अपने दीन पर अमल करोगे। इसके बाद अब नबियों के किस्से तो पूरे हुए, लेकिन इन पर एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का खुलासा, अब ये आयतें असल में मेरी और आपके लिए आ रही हैं। इतने किस्से सुनते हुए हमें लगा कि बस हम ऐसे ही सुन के चले जाएंगे, फरमाया बागे कुछ और होगा। क्या कहा, बस आज ये रहमत इन लोगों का हिस्सा है जो इस पैगंबर नबी उम्मी की पैरवी इख्तियार करें। कौन सी उम्मत है वो? मैं और आप, उम्मत मुस्लिमा, जिसका जिक्र इन्हें अपने हाथ तौरात और इंजील में लिखा हुआ मिलता है। वो इन्हें नेकी का हुक्म देते हैं और बदी से रोकते हैं, और इनके लिए पाक चीजें हलाल और नापाक चीजें हराम करते हैं, और इन पर से वो बोझ उतारते हैं जो इन पर लदे हुए थे, और वो बंदिशें खोलते हैं जिनमें वो जकड़े हुए थे। अल्लाह के नबी की खूबियां इस एक आयत से नोट कर सकते हैं अगर किसी को बतानी हो। यहाँ देखिए, इसर और अगलाल का लफ्ज है। इसर क्या है? बिदात, दीन के नाम पे जो बिदात शामिल कर ली गई थी, और अगलाल क्या है? रसूमात जो जिंदगी में गुजारी गई थी। आज भी सुन्नतों को जिंदा करना है तो बिदतों को छोड़ना पड़ेगा। हकीकत है कि आज हमने अपनी माशरती जिंदगी को इतना बोझल बना दिया कि दीन के लिए वक्त ही नहीं मिलता। एक शादी में बीसियों रस्में हैं और हर रस्म हमसे वक्त मांगती है। हदीस में आते, जिसने एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया उसको 100 शहीदों का अजर होगा। चंद लम्हे के लिए सोचिए, खुद से पूछिए, मैंने खुद पर कितने बोझ लादे हुए, और दुआ करें कि अल्लाह मुझे इन बोझों से आजाद कर दे। बस जो लोग ईमान लाएं और इसकी हिमायत और नुसरत करें और उस रोशनी की पैरवी इख्तियार करें जो इसके साथ नाजिल की गई है, वही फलाह पाने वाले हैं। ए नबी, कहो कि इंसानों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का पैगंबर हूँ जो जमीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है, इसके सिवा कोई और जात नहीं, वही जिंदगी बख्शता है, वही मौत देता है, बस ईमान लो अल्लाह पर और उसके भेजे हुए नबी उम्मी पर। ये किसको दावत ईमान दी जा रही है? सारी दुनिया के लोगों को, जो अल्लाह और उसके इरशादात को मानता है और पैरवी इख्तियार करो, इसकी उम्मीद है कि तुम राह रास पालोगे। अगर उम्मत मुस्लिमा ने खुद कुरान पढ़ा होता ना, तो इन्हीं आयतों के टुकड़े नोट करके ले जाते और लोगों को कहते कि देखो, गॉड तुम्हें कह रहा है कि तुम इस नबी की पैरवी करो। लेकिन चूंकि हम खुद कॉन्फिडेंट नहीं होते तो हम दूसरों से ये बात नहीं करते। आगे जिक्र है उन लोगों का कि जो वाकई मान गए थे। वमिन कौमी मूसा उम्मतन, मूसा की कौम में एक गिरोह ऐसा भी था जो हक के मुताबिक हिदायत करता और हक ही के मुताबिक इंसाफ करता था, और हमने इस कौम को 12 घरानों में तकसीम करके इनको मुस्तकिल गिरोहों की शक्ल दे दी। और जब मूसा से उसकी कौम ने पानी मांगा तो हमने इसको इशारा किया कि फलां जमीन पर अपनी लाठी मारो, 29 चट्टान से यकायक 12 चश्मे फूट निकले और हर गिरोह ने अपने पानी लेने की जगह मुतय्यन कर ली। हमने इन पर बादल का साया किया और इन पर मनोसलवा उतारा। खाओ वो पाक चीजें जो हमने तुमको बख्शी हैं, मगर इसके बाद जो कुछ उन्होंने किया वो हम पर तो जुल्म नहीं किया बल्कि वो अपने ऊपर जुल्म करते रहे। क्या किया था याद है सूरह बकरा? लन नस्विरा अला तामिन वाहिद, एक खाना रोज नहीं खा सकते। आज हमारे भी बच्चे कहते हैं एक ही खाना रोज खाए, एक ही किस्म का खाना रोज खाए। तो अल्लाह ताला कहते हैं हमने उनसे नेमतों को छीन लिया। याद करो जब इनसे कहा गया उस बस्ती में जाकर बस जाओ और इसकी पैदावार से अपनी मर्जी के मुताबिक रोजी हासिल करो और हित ततुन कहते जाओ, शहर के दरवाजे में सजदा रेस होते हुए दाखिल हो जाओ, हम तुम्हारी खताएं माफ करेंगे और नेक रवैया रखने वालों को मजीद फजल से नवाजेंगे। मगर जो लोग इनमें से जालिम थे उन्होंने इस बात को जो इनसे कही गई थी बदल डाला। नतीजा ये हुआ कि हमने इनके जुल्म की पादाश में इन पर आसमान से अजाब भेजा। कैसे अल्लाह कौमों को बार बार मौके देते हैं। अब हजरत मूसा के दौर तक तो ये सब हुआ, हजरत मूसा का डेथ हुई, उसके बाद बनी इसराइल बैतुल मकदस को फतह करते, होते होते दौर पहुंच गया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तक। उनके दौर में एक बस्ती थी, किसी दरिया के किनारे रहती थी और उनका पेशा मछलियां पकड़ना था। यहूद ने खुद अपनी मर्जी से हफ्ते का दिन ले लिया था कि हम उस दिन मछलियां नहीं पकड़ेंगे, हम इबादत करेंगे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उस दिन क्या होता था, आइए इस पूरे वाक्य को पढ़ के इसमें इंशाल्लाह अपने अमल की बहुत सारी बातें लेंगे। बहर, और जरा इनसे इस बस्ती का हाल भी पूछो जो समंदर के किनारे वाक्य थी। इन्हें याद दिलाओ वो वाक्या के वहां के लोग सब के दिन यानी हफ्ते के दिन अहकाम इलाही की खिलाफ वर्जी करते थे, और ये कि मछलियां हफ्ते के दिन ही उबर उबर कर सतह पर इनके सामने आती थी। मछलियों को भी शऊर था कि आज हमें नहीं पकड़ेंगे तो वो ऊपर आती। और इसी पे कहते हैं कि किसी सोसाइटी में हराम जराए का उबर उबर के आना ये अल्लाह की एक आजमाइश है। लोग कहते हैं हम सबर कैसे करें, हर तरफ तो गुनाह की दावत है, तो यही तो आजमाइश है। हराम था तो उठ के भी बहुत आ रही है, और आम दिनों में क्या होता था, और सबके सिवा बाकी दिनों में नहीं आती थी, यानी आम दिनों में कस्टमर कोई नहीं आ रहे और जुमे की नमाज के वक्त बहुत सारे कस्टमर आ जाएं, तो ये आजमाइश होगी ना। ये इसलिए होता कि हम इनकी नाफरमानियों की वजह से इनको आजमाइश में डाल रहे थे। और इनको ये भी याद दिलाओ कि जब इनमें से एक गिरोह ने दूसरे से कहा था कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला या सख्त सजा देने वाला। ये होते हैं बीच के जो मीडिएटर्स होते हैं, वो कहते हैं ना ना किसी को ना बुरा को, इनको नहीं भला पता। लेकिन इनका जवाब कितना खूबसूरत है। तीसरा गिरोह, उन्होंने जवाब दिया हम ये सब कुछ तुम्हारे रब के हजूर अपनी माजरत पेश करने के लिए करते हैं और इस उम्मीद पर करते हैं कि शायद ये लोग नाफरमानी से परहेज करने लगे। आखिरकार जब ये इन हिदायत को बिल्कुल ही फरामोश कर चुके जो इनको याद दिलाई गई, तो हमने इन लोगों को बचा लिया जो बुराई से रोकते थे और बाकी सब लोगों को जो जालिम थे इनकी नाफरमानियों पर सख्त अजाब में पकड़ लिया। फिर जब वो पूरी सरकशी के साथ वही काम करते चले गए जिनसे इनको रोका गया था, तो हमने कहा बंदर बन जाओ जलील और खुआर। ये वाक्या बनी इसराइल की तारीख में भी बड़ा आम है, हमने पीछे भी पढ़ा। चंद बातें इसमें से हमें मिलती हैं। पहली बात है कि जब किसी बस्ती में बुराई हो और लोग उस बुराई पे ना रोके, तो जब अजाब आएगा तो ना रोकने वालों को भी उसका नुकसान होगा। फिर दूसरी बात है कि दूसरों को रोकते रहें, उजर कायम हो जाएगा कल अल्लाह के हाँ, लोग ना रुके आप गुनाहगार नहीं होंगे। फिर एक और बात है कि मकसद मनवाना नहीं है, मकसद बात पहुंचाना है। फिर एक और बात समझ आती है कि लिव एंड लेट टू लिव, ये सही जुमला नहीं है। आप गुनाह करते हुए लोगों को नहीं छोड़ सकते कि छोड़ दो जीने दो जियो और जीने दो, बल्कि आप रोकिए। आई एम ओके एंड यू आर ओके, बुराई को देखेंगे रोकना लाजिम होगा। ये जो लोग कहते हैं रिलीजन इज पर्सनल मैटर, ये सारी बातें दुरुस्त नहीं है, तो हमारे दिल में भी ये दर्द होना चाहिए। अपने आप से पूछते हैं आज हमारी मछलियां कौन सी हैं, आज वो नाजायज चीजें जो किसी भी सोसाइटी में होती हैं क्या हमें अपने इर्द गिर्द नहीं दिखते। फिर एक और जुमला नोट कीजिए, ही तानुहुम, मछलियां उन्हीं की थी लेकिन उन्होंने हराम तरीके से ले ली। हदीस में आता है कि रिस्क इंसान को मौत की तरह ढूंढता है, सोर्स ऑफ इनकम हम चूज करते हैं, असल चीज उतनी की उतनी रहती है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आज उम्मत मुस्लिमा की कमाईयों को भी पाक कर दे। और याद करो जबकि तुम्हारे रब ने ऐलान किया कि वो क्यामत तक बराबर ऐसे लोग बनी इसराइल पर मुसल्लत करता रहेगा जिनको बदतरीन अजाब देंगे। यकीनन तुम्हारा रब सजा देने में बहुत तेज दस्त है और यकीनन दरगुजर और रहम से भी काम लेने वाला है। हमने इनको जमीन में टुकड़े टुकड़े करके बहुत सी कौमों में तकसीम कर दिया। कुछ लोग इनमें नेक थे और कुछ इससे मुख्तलिफ, और हम इनको अच्छे और बुरे हालात में आजमाइश में मुब्तला करते रहे, शायद कि वो पलट आए। फिर अगली नस्लों के बाद ऐसे नाखल्फ लोग इनके जानशीन हुए जो किताब इलाही के वारिस बनकर इस दुनिया दनी के फायदे समेटते रहे। नोट कीजिएगा, बनी इसराइल के जवाल की अलामत, किताब के वारिस लोग दुनिया परस्त हो गए, दुनिया की मोहब्बत उनमें आ गई और कहते थे कि तवक्को है कि हमें माफ कर दिया जाएगा, और अगर फिर वही दुनिया का सामान उनके सामने आता तो फिर इसको लपक लेते। क्या इनसे किताब का अहद नहीं लिया जा चुका था कि अल्लाह के नाम पर वही बात कहें जो हक हो? ये खुद पढ़ चुके हैं जो किताब में लिखा गया है। अगर वही मताए दुनिया सामने आती फिर लपक कर उसको ले लेते। क्या इनसे किताब का अहद नहीं लिया जा चुका है कि अल्लाह के नाम पर वही बात कहें जो हक हो? और ये खुद पढ़ चुके हैं जो किताब में लिखा है, और आखिरत की क़यामगाह तो अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए बेहतर है। क्या तुम इतनी सी बात समझते नहीं हो? जो लोग किताब की पाबंदी करते और जिन्होंने नमाज कायम कर रखी, यकीनन ऐसे नेक लोगों का अजर हम जाया नहीं करते। यहां से क्या पता चलता है कि जब एक इंसान किताब को थाम लेता है, किताब से उसका ताल्लुक जुड़ता है, तो अल्लाह पकड़ता है। आप देखिए, ये तीसरा मुकाम मुझे याद आ रहा है कि जहां किताब को मजबूती से पकड़ने की बात है। दो दफा पीछे गुजर के खुजू बिकुवत, यहाँ के युमस्सिकूना बिल किताब, तो किताब को मजबूती से पकड़ना क्या है? दोनों हाथों से पकड़े, जरा सा भी छोड़ते हैं ना ये भाग जाएगी। आज हम जरा सा नखरा करेंगे ना, मुझे नहीं ये सुननी, तो ये नहीं सुनी जाएगी। हदीस में आता है कि जैसे एक सरकश ऊंट रस्सी तोड़ाता है ना, इस तरह ये किताब भाग जाती है। इफ यू डोंट यूज इट यू विल लूज इट। इसको इजी करना, कुरान यूजर फ्रेंडली, जितना इसको पढ़ते जाएंगे उतना आसान होगा, और जितना ज्यादा कुरान को और इस्लाम को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करते रहेंगे उतना आसान लगेगा। वरना अल्लाह ने कहा तुम क्या भागोगे, ये तुमसे भाग जाएगी। और यार ये भी बात पता चली कि इसको मजबूती से पकड़ना, यानी ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं है, इसको पूरी तरह अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह फिर खैर आएगी। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आज उम्मत मुस्लिमा को इसकी दावत दे दे। बस जब हम ऐसी चीजों को लेकर पीछे पड़ जाते हैं, हम कहते हैं छोड़ो इससे क्या होता है, दिस एंड दैट, तो जितना ज्यादा इस इस्लाम को, इस किताब को मजबूती से पकड़ेंगे उतना अल्लाह सुबहान तआला हमारे लिए आसान करेगा। आधी चीज को मानना तो बहुत मुश्किल होता है। आधी रेसिपी यूज कर लें, बाकी क्या करें बीच में लटके हुए? कोई ड्राइविंग आधी सीख ले और आधी छोड़ दे तो गाड़ी में बैठ के आगे क्या करेगा? तो हर चीज को हम एक्सीलेंसी के दर्जे पे करते हैं, तो फिर कुरान को और किताब को हम क्यों कहते हैं? लोग क्या कहते हैं? इट्स ओके, ये बस ठीक है, हम ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां कर दे। यहाँ पे रुकेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।